चुंबकीकृत करके पान करने का प्रयत्न किया और हमें पान कराया। रसिक जनों का स्वभाव ही यह होता है कि वे तो रस का पान करते हैं, रस के आस्वादक तो मुख्यतः वे ही हैं, परंतु उनकी सिकुड़ियों से एक आध बूंद जो टपक जाती है उसमें हम सभी के भी चेता चेती लग जाते हैं और उनका भी पेट भर जाता है। तो उनके फैलाव से ही कृतकृत्य होकर के आयुषी रूप के गुणानुवाद का गायन करने के लिए यहां प्रवृत्त हो रहा हूं। वे शक्ति संचार करेंगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा बालक हूं। श्री कृष्ण लीला रसपूर रही। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कृष्ण लीला मृतपूर, चैतन्य चरित सुकरपूर। कृष्ण लीला है अमृत का समुद्र, अमृत की बाढ़ पूर, और चैतन्य लीला है कर्पूर। यदि कोई रस कितना भी मीठा हो और उसमें सुगंध न हो तो रस सीमित रहेगा, रस सबको आकर्षित करने वाला नहीं हो सकता। जब कपूर किसी रस में रसाला में मिल जाए तो वह रसाला दूर दूर से रस स्वाद करने वालों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। और यदि अमरस में इलायची नहीं मिलाई जाए, यदि कोई रस है उसमें गुलाब जल नहीं मिलाया जाए, चाहे मिश्री का ही वह रस है, बिल्कुल बहुत सुंदर सार है, रस है, पर उसमें सुगंध नहीं है, तो वह सुगंध वह रस दूसरे लोगों को जो उसके पास में नहीं है दूर से आकर्षित नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति श्री गौर परकर की है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारे श्री श्याम सुंदर बहुत लोही है, बहुत बनिया है। वे मुक्तिम ददात कहित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति दे देते हैं भक्ति योग नहीं देते हैं, बड़ा छिपा करके रखते हैं और उस भक्ति योग को नहीं देते हैं। तत्वतः यदि कभी भक्ति योग देते भी हैं तो कुछ फीका फीका धुला धुला सा दे देते हैं। सार की बात उनके पास में खुद नहीं है, उनको भी मालूम पड़ता है केवल रस की कुछ धोमन, रस में कुछ मिश्रित, कुछ रस उनके पास में है, उसमें से ही कुछ टपका देते हैं। जो रस का सार है वह तो श्री ब्रजगोपीराजों के पास में है और उस रस के सार के लिए उनको भी प्रार्थना करनी पड़ती है। यह किंकरीश वंश खल काकवाणी, यहां पर लिखा हुआ है शुक्र नारायण सरस्वती का वो वचन, किंकरियों के आगे काकवाणी करते हुए उनको हार खानी पड़ती है और ये कहा कहना पड़ता है वो शिवप्रिया जी का जरा सा प्रसाद हमको प्राप्त हो जाए, कृपा हमको प्राप्त करा दो। तो वो रस उनके उनको स्वयं भी प्राप्त नहीं है और वे स्वयं न पारे निरुद्ध संयोजन प्रतिहात साधना के द्वारा उस रस की स्वयं अभिलाषा करते हैं, स्वयं कामना करते हैं, क्योंकि वह आश्रय जातीय प्रेम उनके पास में स्वयं नहीं है। वह प्रेम है, विस्तार की आवश्यकता नहीं है, यहां पर विस्तार के लिए मेरे पास में इतनी क्षमता नहीं है कि विस्तार कर सकूं इन रसकों के आगे, इसलिए बात को केवल संकेत के द्वारा आगे बढ़ाऊंगा। वह रस यदि कहीं है तो वो श्री ब्रजगोपीराजों के पास में है। वह रस उनके अनुगत्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, किसी दूसरे के अनुगत्य के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यहां तक कि वेद के उपास्य, वेद के वेद्य श्री श्याम सुंदर के द्वारा भी वह रस प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वांछन्ति यद् भवीयो मुनयो वयम् च। उस प्रेम को मुनिगण भी प्राप्त करना चाहते हैं और श्रुतिगण ब्रह्मज्ञा ब्रह्मज्ञा वो श्रुतिगण जो है वह भी उसको केवल ढूंढ ढूंढ रही है, श्रुतियों को भी मिला नहीं। तो जो कृष्ण प्रेम आश्रय जाती है, जो प्रेम श्रुतिगणों को भी प्राप्त नहीं है, यदि कोई यह विचार करे कि श्रुतियों के सेवन के द्वारा उस प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो यह दुर्मुख कल्पना ही है। श्रुतियों को स्वयं ही नहीं मिला, तो यदि कोई ये चाहे कि श्रुति मार्ग का सेवन करते हुए, विधि मार्ग का सेवन करते हुए उस प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः आसाम हो चरे जुषाम महमश्याम वृंदावन के मतगुल औषधि नाम या स्वयं स्वयं हमारे पठन चुवा भेजे मुकुंद पदवी श्रुति ज्ञान। तो श्रुति केवल उसका ब्रह्मज्ञान कर रही है, वह उसे ढूंढ रही है, श्रुतियों को भी वह प्राप्त नहीं है। तो श्रुति मार्ग के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह प्राप्त किया जा सकता है एकमात्र श्री प्रिया जी के परकर की कृपा के द्वारा ही। परंतु मुझे कहने में संकोच नहीं, श्री स्वामी जी के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए वे मुझे क्षमा करेंगे, उनके परकर के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए मैं ये कह सकने में आज साहस कर रहा हूं किसी बल पर कि श्री स्वामी और उनका परकर भी गूंगा है। वह उस परकर का आस्वादन तो लेता है, परंतु वह भी स्वार्थी है, वह उस परकर का आस्वादन लेता है स्वयं ही स्वयं। श्री स्वामी जो आस्वादन लेती है उससे बढ़कर के आस्वादन है सखियों का, सखियों से बढ़कर के आस्वादन है मंजरियों का, परंतु सखी और मंजरी जिस आस्वादन को प्राप्त कर रही है वह आस्वादन भी गूंगा है, और वह केवल गूंगे का गुण है जिसको वे को आस्वादन देती है, परंतु वे उसका वर्णन नहीं करती है, वे उसका वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है, और यदि वर्णन करती भी है तो वहां पर रेवड़ी बकती है, केवल अपने अपने परकर को दी जाती है। जो स्वामी जी का परकर है, जो श्री विशाखा जी का परकर है, ललिता जी का परकर है, श्री ललिता जी ने श्री योगल का जो आस्वादन प्राप्त किया, श्री रूप मंजरी जो योगल का आस्वादन प्राप्त कर रही है, रूप मंजरी केवल मंजरी मंजरी गांव को तो वो बांटेंगी, वहां पर भी रेवड़ी रेवड़ी बटेगी, वह भी हमारे मतलब की वस्तु नहीं है, वहां पर रेवड़ी बटेगी, वहां पर वे जो कुछ भी आस्वादन प्राप्त करेंगी वे अपने अपना को ही देंगी, उनका वह आस्वादन, उनका वह अनुभव, उनकी वे अनुभूतियां उनके लिए हितकर है, परंतु वे हमारे लिए हितकर नहीं है, उनके लिए होंगी या कोई उनका जो शरणागत हो, कोई जो उन तक पहुंच गया हो उसके लिए भी हितकर होंगी, परंतु श्री रूप मंजरी का ये जो गूंगे का आस्वादन है, श्री रूप मंजरी का ये जो रेवड़ी बांटना है, यह रेवड़ी बांटना उन्मुक्त रूप से एक सदावर्त के रूप में प्रकट होता है, तब जबकि श्री रूप गोस्वामी होकर के वे प्रकट होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री रूपमंजरी या तो गूंगे की तरह से आस्वादन करेंगे, उनका जो आस्वादन है वह रूप आस्वादन है, या फिर वहां पर रेवड़ी बटेगी, परंतु रूपमंजरी में शास्त्रों के विवेचन करते हुए उसका प्रतिपादन करने की पूर्णतः सामर्थ्य है, परंतु वे शास्त्रों के विवेचन में पड़ती नहीं है। ब्रज गोपालों को पूर्णतः इस बात का ज्ञान है श्री कृष्ण क्या वस्तु है, वे प्रेम में कहती है कि नकल गोपिका नंदन और भगवान अखिल देवना मंत्र आत्मे में यज्ञ सार्थित और शुभते सखे उदयवान सातुकान को ले, यह सिद्धांत तत्व का ज्ञान विरह अवस्था में उनको है, क्योंकि विरह भाव वह भाव है जो कि सूर्य के समान कृष्ण के माधुर्य का भी प्रकाशक है और कृष्ण के ऐश्वर्य का भी प्रकाशक है। परंतु जैसे ही कृष्ण उनके सामने आते हैं, कृष्ण मिलन का वह माधुर्य कोट कोट चंद्रमा के प्रकाश के समान उन्मादक होकर के केवल कृष्ण के माधुर्य का ही आस्वादन कराता है। विरह की स्थिति में तो उनमें ऐश्वर्य का ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, परंतु मिलन की स्थिति में श्री ब्रज गोपाल के मुख से कृष्ण के केवल माधुर्य का ही वर्णन होता है, माधुर्य का ही वे आस्वादन अपने परिकर के सामने कहती है। विरह की स्थिति में ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का वर्णन करने लगती है, परंतु मिलन की स्थिति में केवल माधुर्य का आस्वादन करती है। तो श्री ब्रजगोपालों को ऐश्वर्य का ज्ञान तो है, परंतु ऐश्वर्य का ज्ञान होते हुए भी कृष्ण माधुर्य की वह मधुरिमा, कृष्ण माधुर्य का वह उन्मादकता कोट कोट चंद्रमा की उन्मादकता से भी बढ़कर के उन्हें ऐश्वर्य का वर्णन कर सकने की का अवकाश ही प्रदान नहीं करता, और वे केवल माधुर्य के रूप वर्णन में ही, माधुर्य के आस्वाद में ही केवल निष्णात रह जाती है। बड़ा अवस्था में कहीं थोड़ा सा निरूपण तो करती है, परंतु वहां पर भी प्रेम की अतिशयता उस ऐश्वर्य को, संपूर्ण ज्ञान को उस प्रेम का अंग बना करके ही प्रस्तुत कर देती है, और वे निज संबंध के द्वारा ही उस ऐश्वर्य का दर्शन करती है। जहां जहां भी ऐश्वर्य का दर्शन करती है वहां निज संबंध के द्वारा ही उस ऐश्वर्य का वे विचार करती है, ऐश्वर्य रूप में उसका विचार नहीं करती है, निज संबंध से ही उसको देखती है। नंदबाब यदि बलो देवता के द्वारा कृष्ण को पूजित देखते हैं तो निज संबंध से ही देखते हैं कि वो नारायण की कृपा से हमारे पूर्वज श्री पर्जन्य महाराज के तप के प्रभाव से आज नारायण ने हमको ऐसा बेटा दिया जिस बेटे की बड़े बड़े देवता आराधना कर रहे हैं। वहां पर निसंबंध से देख रहे हैं, ऐश्वर्य का दर्शन तो कर रहे हैं, ऐश्वर्य का अनुभव भी हो रहा है, गोलोक दर्शन में भी श्रुतियों के द्वारा उपासित कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है, परंतु निसंबंध से ही वहां पर कृष्ण को दिखाया जा रहा है, और वहां पर ऐश्वर्य का दर्शन निज संबंध के द्वारा माधुर्य से आवृत होकर के ही विराजमान है। अतः जो परकर है वह गुंगे का स्वाद लेता है, परकर गुंगा है, श्री कृष्ण परकर गुंगा है। परंतु जब कोई वाचाल है तो वह वाचाल है श्री गौर परकर, क्योंकि इसका शास्त्रों के विवेचन में भी, शास्त्रों का तुलनात्मक परंपरा शोधन करते हुए शास्त्रों के परम सार को प्रस्तुत कर सकने का, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए परम सार को प्रस्तुत कर सकने का और एक तार्किक और बौद्धिक आधार पर शास्त्रों के उस सार को प्रस्तुत कर सकने का अधिकार यदि किसी को है और सुविधा यदि किसी को प्राप्त है तो वह सुविधा प्राप्त है, वह अवसर प्राप्त है श्री रूप गोस्वामी। अतः श्री रूप गोस्वामी का जितना हमारे ऊपर अवदान हो सकता है, जितना वे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इतनी रूप मंजरी नहीं हो सकती। फिर जब रूप मंजरी नहीं हो सकती तो फिर सखियों की और स्वयं स्वामी जी की बात को कहना क्या, स्वामी जी का जो सखियों का और श्री स्वामी जी का जो आस्वादन है उससे बढ़कर के रूप मंजरी का आस्वादन है, फिर श्याम सुंदर की तो कहना ही क्या। तो जब रूप मंजरी को वह वस्तु प्राप्त नहीं है, वह सुविधा प्राप्त नहीं है, तो फिर दूसरों को तो होगी काय। श्री रूप गोस्वामी जी के इस महिमा को, क्योंकि ये ब्रह्म तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये परमात्म तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये भगवत तत्व का विवेचन कर सकते हैं, ये अवतार लघु अवतारमृत के द्वारा अवतारों का जो विवेचन है, अवतारों की विभिन्न जो विचित्रियां हैं, अवतारों के विभिन्न जो प्रकार है उनका तुलनात्मक और उनमें परावस्थ अवतारों में श्री कृष्ण स्वरूप की स्वयं रूपता का विवेचन कर सकने का इनको अधिकार प्राप्त है, रूप मंजरी को वह अधिकार प्राप्त नहीं। अतः ये हमारे लिए सिद्धांत को सुदृढ़ करने में श्री रूप गोस्वामी जितने उपयोगी है इतना कोई दूसरा उपयोगी नहीं है। श्री रूप गोस्वामी जी के संपूर्ण अवदान को जो कि बहुमुखी है, उस बहुमुखी अवदान को जिस दृष्टि से भी देखा जाए वह अपूर्व है, वह वाणी के परे है। श्री वृंदावन के रसोपासना के पांच जो तत्व है उपास्य तत्व, उन उपास्य तत्वों का जैसा विवेचन श्री हिंदुस्वामी पाद ने किया और उसको अपने लीला काल में जैसा प्रकट करके दिखाया, उसका प्रयोगात्मक स्वरूप जैसा दिखाया, केवल सैद्धांतिक स्वरूप ही नहीं प्रयोगात्मक स्वरूप जैसा दिखाया, वैसा कोई दूसरा दिखा सकने में समर्थ है ही नहीं। श्रद्धा विशेष प्रीते श्रीमूर्ति रंग सेवनम, श्री गोविंद स्वरूप को प्रकट किया और गोविंद स्वरूप को प्रकट करके जिस भाव के द्वारा श्री गोविंद स्वरूप की सेवा प्रकट की, वह साधकों के लिए जो साधन के परम उपास्य तत्व होकर के विराजमान, जो साधन के अधिष्ठात्री देवता होकर के विराजमान, अवधेय तत्व के जो अधिष्ठात्री देवता होकर के विराजमान है, उन श्री गोविंद तत्व को, श्री गोविंद स्वरूप को उन्होंने सामने प्रकट किया। श्री गोविंद योगपीठ और गोविंद को, गोविंद स्वरूप की स्थापना और उसके द्वारा साधन तत्व के अधिष्ठात्री देवता के प्रति साधक को जैसे उन्होंने लगाया, वह श्री रूप गोस्वामी पाद की सदा सदा पूरी वृंदावनी उपासना में अधुनातन और आगे आने वाली जितनी उपासना है, वह उपासना में वह सर्वदा सर्वदा वह वंदनीय रहेगा, स्मरणीय रहेगा। फिर श्रीमद वृंदावनीय तत्व का, वृंदावनी उपासना पद्धति का दूसरा उपास्य तत्व है श्रीमद भागवतार्थानाम आस्वादो रसकैस्सह। श्रीमद भागवत के गूढ़तम सिद्धांतों को जैसे उन्होंने प्रकट किया, श्री रासलीला के सिद्धांत को श्री अपने तीनों नाटकों के माध्यम से, ललित माधव, विदग्ध माधव और दानकेल कौमुदी के द्वारा, और फिर लीलास्तवों के द्वारा जिस तरह से उन्होंने प्रकट किया, श्री वंदना में सवमाला के अंतर्गत, श्री गोविंद वृंदावली के अंतर्गत जैसे श्री गोविंद की वृंदावली गाते हुए जो श्रीमद् भागवत के तत्व और श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है उसके सिद्धांतों को जैसे प्रकट किया, वह अपने आप में अपूर्व है। श्रीमद् भागवत के उस तत्व को, श्रीमद् भागवत का जो परकिया तत्व है, उस परकिया तत्व को, परकिया रसमयी उपासना पद्धति के गूढ़ सिद्धांत को यदि श्री रूप गोस्वामी पाद अपने विदग्ध माधव नाटक में प्रकट नहीं करते तो कौन जान सकता था कि नासीयन खल कृष्णाय मोहिता स्पष्ट माया मन मानस पार्श्व स्थान स्वान स्वान धारण विजा, इस बात को कौन जान सकता था। ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, एक दिशा निर्देश मात्र करके अपनी वाणी को कृतकृत करना है। श्री वृंदावनी उपासना का तीसरा जो उपास्य तत्व है वह है सजातीय शेष निर्दय साधु संगत स्वतो वरे, सजातीय वैष्णव का संग, और जितने भी वैष्णव आए उन सब के संरक्षण का दायित्व यदि किसी ने लिया तो वह रूप सनातन और उनके बाद में श्री जीव गोस्वामी पाद ने उनके संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया। तो वैष्णव सेवा जो कि साधन नहीं है, जो कि साध्य है, वह वैष्णव सेवा उन्होंने साध्य कैसे हो सकती है इस बात को दिखाया। और सजातीय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के साथ में कभी देहा कर, कभी विचार करते हुए, कभी श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ में विचार करते हुए उस लीला का जो कुछ भी चिंतन कर रहे हैं कि श्री प्रिया जी की बहनी कैसे सर्पणी के समान लहराती है, श्री सनातन श्री दास गोस्वामी ने यदि खीर खाई तो उनको अफरा कैसे हुआ, इन सारी बातों का विचार करते हुए सजाती वैष्णवों के साथ में जैसे भी विचार कर रहे हैं और उनको जैसे आगे प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, भजन को जैसे सुपुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिनको भी भेजा श्री महाप्रभु ने उनको रूप सनातन के पास में ही भेजा, उनके आश्रम में ही भेजा। और नाम संकीर्तनम और श्रीमद मथुरा मंडली स्थिति श्री वृज को प्रकट करने में, वृज के तत्व को प्रकट करने में जैसा श्री रूप सनातन का यहां के विभिन्न लीला स्थल, विहार स्थल, उन सबों को प्रकट प्रकट करने में श्री सनातन का जो योगदान रहा है वह योगदान आपको सैद्धांतिक विवेचन में भक्त साम्य सिंधु और उज्जवल नीलमणि का कोई तुलना नहीं। रस की बात बहुत कही जा रही थी, परंतु इतना सारा शास्त्रों का पहाड़ था कि उसे संकलित करना और उसे क्रमबद्ध करके उसमें पूर्वापर संबंध को स्थापित करना यह संयोजन का काम बहुत बड़ा था। माना श्री गोस्वामी पाद ने जो कुछ भी बात कही कोई नई नहीं है, वहां शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित है, कोई नई बात थोड़ी कही आचार्य, जो शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है उसी बात को वे प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु वह इतना क्रांत विक्रांत और खंडित था कि उसको एक सूत्र में बांध लेना यह बहुत बड़ी बात थी, और इतना बड़ा बड़ा सिद्धांतों का पहाड़ था कि उसको एक क्रम से सजो देना यह अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था। श्री रुद्रसन पाद ने सारे विवेचन को करते हुए जिस सूक्ष्मता के साथ में निर्दोष रूप में जो परिभाषाएं दी वे परिभाषाएं अपूर्व है। भक्ति की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा, भाव की परिभाषा, ये सारी की सारी परिभाषाएं अपने आप में अपूर्व है। सम्यक मिश्र के स्वांत मोत्रात्शया शांकत भाव सुसांग आत्मा वे ही प्रेम निबद्ध थे। इस प्रकार प्रेम की परिभाषा कहीं भाव की परिभाषा जिस तरह से परिभाषाएं देते हैं और वे परिभाषाएं जैसे अतिव्याप्ति अव्याप्ति और असंभव इन सारे दोषों से रहित होकर के जितनी सार्थक होकर के विराजमान है वे परिभाषाएं अपने आप में एक मानदंड है, उनको देख करके आश्चर्य होता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, श्री वृंदावन के संरक्षण के क्षेत्र में, वैष्णवों के संरक्षण के क्षेत्र में, शास्त्र विवेचन के क्षेत्र में श्री गुरु गोस्वामी पाद का जितना अवदान है वह अवदान अपूर्व है, और वह अवदान श्री महाप्रभु के श्री गुरु गोस्वामी के चरणाश्रित होने पर जहां हमको सारे शास्त्रों के सिद्धांत को जान सकने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वहां पर श्री राहत श्री गौर लीला का भी अनुसंधान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और वहां श्री राधा कृष्ण की लीला का भी आस्वादन प्राप्त करने का अवदान प्राप्त होगा। यदि राधा कृष्ण की लीला का आस्वादन किया जाए तो केवल प्रिया प्रीतम की लीला ही रह जाएगी, केवल ब्रजबिहारी रह जाएगा, परंतु यदि गौर लीला यदि श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए तो श्री रूप के आश्रय ग्रहण करने पर, रूपाश्रित भक्ति करने पर, गौर भक्ति, श्री गोविंद भक्ति और श्री वृ भक्ति, ये तीनों की तीनों भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। श्री गौर भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति और श्री वृ भक्ति, ये तीनों की तीनों भक्ति जो है वह श्री रूप गोस्वामी के आश्रय के द्वारा अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए काहे को कोई पल्लव ग्राहक ग्रहण करेगा, कोई मूल को क्यों नहीं पकड़े, जिस मूल को पकड़ने से तीनों वस्तुओं की एक साथ प्राप्ति हो जाएगी। रूप के चरणाश्रय ग्रहण करने पर, रूपानुगत जनों का आश्रय ग्रहण करने पर श्री गौर भक्ति, गुरु भक्ति, गौर भक्ति और कृष्ण भक्ति, ये तीनों स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी। अतः श्री रूप अनुगत जनों के श्री चरणारविंद में जो यहां पर विराजे हुए हैं उन सब रूप अनुगत वैष्णव जनों के श्री चरणारविंद में वंदना करते हुए इन वैष्णवों से यही प्रार्थना है कि श्री रूप चरणामभोज में हमारी भक्ति हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा शक्ति संचार करें।
आप लोगों ने श्री भट्ट जी के मुख से श्रवण किया, नई नई बातें मालूम जैसे दी पड़ रही हैं। राधा और कृष्ण मूक हैं, उनका परिवार जितने परिकार हैं सब मूक हैं। तात्पर्य क्या, क्या रस है उनकी अपनी अनुभूति रखते हैं, दूसरों को नहीं दे पाते। किंतु रूप गोस्वामी ने जो रूप मंजरी हैं वो नहीं दे सकी, स्वरूप दामोदर जी ललिता हैं, राय रामानंद जी विशाखा हैं, वो लोग जिस रस को नहीं दे सके उन लोगों ने भी रूप गोस्वामी के माध्यम से उनके अंदर में स्फूर्ति करा करके दिया। इसलिए रूप गोस्वामी जी समर्थ हुए जो चैतन्य महाप्रभु नहीं प्रकट कर सके, विशेष करके भारतीय भाव काष्ट की स्थापना ये सहज बात नहीं थी। महाप्रभु जी ने इसके लिए कुछ नहीं किया, सदरूप गोस्वामी के ऊपर निर्भर किया, स्वरूप दामोदर ने उन्हीं के ऊपर, राय रामानंद ने, सनातन गोस्वामी ये एक एक से हैं, रूप गोस्वामी के गुरु सनातन गोस्वामी हैं, किंतु रूप गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी भी उनकी कैसी सुंदर वंदना करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी यदि नहीं आते तो कृष्ण का सारा परिकर भरा रह जाता। महाप्रभु के परिकर भी स्वरूप दामोदर राय रामानंद रहते, किंतु न जाने क्यों रूप गोस्वामी के सिर पर भी इस महिमा का सेहरा बंधना था, इसलिए उनके माध्यम से इन लोगों ने कराया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं रस सिंधु का एक छोटी सी कण आपको बतला रहा हूं रूप गोस्वामी के, इनके हृदय में मैंने स्फूर्ति की। आप लोग सभी लोग श्री स्वरूप दामोदर जी, राय रामानंद जी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य सभी मिलकर के इसके ऊपर में कृपा जो हमारे मन की अभिलाषा को पूर्ण करे। इसीलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जीन भूतले, नरोत्तम ठाकुर जी ने बहुत सोच विचार करके कहा, दूसरे के लिए नहीं कहा। इसलिए इन्होंने एक दिशा दिग्दर्शन इन्होंने की, ये सारा कृष्ण का परिकर मौन है, महाप्रभु के भी परिकर करीब करीब मौन है, किंतु ये मुखर है रूप गोस्वामी के रूप में। सारी लीलाओं का सार रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, श्रीमती श्री कृष्ण तत्व क्या है, इन चारों का जो कि महाप्रभु जी और रामानंद के संवाद इत्यादि में था, सबका इन्होंने सूत्र के रूप में बड़े सुंदर रूप से इन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए हमारा सारा समाज ही नहीं, केवल गौड़ीय वैष्णव समाज नहीं, जितने भी भक्ति के संप्रदाय हैं, यहां तक कि मैं देखता हूं उनको देखा था विद्वान जिनका नाम लिए, कर्तात्री जी का, अखंडानंद जी का, वो भी उनका जूठन लेकर के कुछ देते थे, उनके भी साहित्य में और उनके ज्ञान में कुछ नहीं था। यदि उनको कुछ कहना होता भक्ति रस पर, तो रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के, कभी कर्ण को रूप गोस्वामी के विचारों को लेकर के उनका जूठन लेकर के देते थे और उनका नाम नहीं करते थे अकृतज्ञ के समय। इसलिए रूप गोस्वामी का जो अवदान जो इन्होंने वर्णन किया सब कुछ में बहुत सुंदर रूप से व्यक्त किया है, जो कि हम लोग भी नहीं जानते थे, उन्होंने ये सब चीजों का दिग्दर्शन कराया। अब समय भी कम है, तभी आप लोग डटे रहेंगे, 7 बजे तक समाप्ति का था, 7 हो गया, तभी 1 घंटा और आप लोग चुपचाप बैठे रहें और श्रवण कीजिए। अभी देखिए कैसे कैसे सुंदर रस प्रवाहित होंगे। अभी हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी भागवत भूषण है, बहुत विद्वान आदमी है, महाप्रभु के विचारों में बहुत सुंदर रूप से प्रविष्ट हैं, इसलिए कुछ संक्षेप में आप लोगों को उसे श्रवण कराएंगे।